بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر وافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے حالات۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جہاں ناظرین، آج کل پاکستان میں کراچی، شہر کراچی، کراچی کے حالات، کراچی کی بدامنی اور کراچی میں بڑھتی ہوئی ہر طرح کی دہشت گردی اور ٹارگیٹ کلنگ، وہ موضوع ہے جو موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ اور دو سال قبل جب سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا تھا، مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر اسی وقت سے کراچی کے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہوئی تھی تو آج جو چاروں طرف سے کراچی، کراچی اور کراچی کی بات ہو رہی تو شاید یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ بہرحال، حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جائے گا، اور اس دوران ایم کیو ایم نے کراچی میں فوج کی تعیناتی کا مطالبہ کر ڈالا۔ یہ وہ معاملات ہیں جو اختلافی بن گئے ہیں۔ حکومت اور اس کے اتحادیوں کا کہنا ہے کہ کراچی میں فوج تعینات کرنا مناسب نہیں، جبکہ ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ رینجرز اور پولیس کی موجودگی میں صحیح معنوں میں کراچی میں امن و امان برقرار نہیں ہو سکے گا۔ بہرحال، کراچی پاکستان کی صنعت اور تجارت کی شہرگ حیات ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جو ہر کس و ناکس تسلیم کرتا ہے، بڑے سے لے کے چھوٹا تک۔ اور بڑا سیاستداں ہو یا بڑا تاجر ہو، چھوٹا سیاستداں ہو یا چھوٹا تاجر ہو، عام شہری ہو یا ایک عام اور معمولی پاکستانی ہو، سب کا یہی یقین ہے، سب کا یہی خیال ہے کہ اگر کراچی میں خوشحالی ہے تو پورے پاکستان میں خوشحالی ہے، اور اگر کراچی میں امن و امان کی صورتحال ابتر ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے پورے ملک کی معیشت ابتر ہونے کا خطرہ ہر آن موجود رہتا ہے۔ اور وزیراعظم میاں نواز شریف نے کل بدھ کو اسی سلسلے میں ایک اجلاس طلب کیا ہے جو کابینہ کے اجلاس کے عنوان سے منعقد ہوگا، اور جس میں اہم فیصلے کیے جانے کی توقع ہے۔ بہرحال، ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور معزز مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
پاکستان میں بدامنی کی بھیانک لہر سے سہمے ہوئے صنعتی شہر کراچی میں حالات پر کنٹرول کرنے کے تعلق سے متعلقہ ادارے ناکام ثابت ہوتے رہے ہیں۔ چنانچہ آج کراچی میں وفاقی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اجلاس کے لیے وزیر اعظم نواز شریف اپنے ارکان کابینہ کے ساتھ منگل کے روز کراچی پہنچے۔ وزیر اعظم ہاؤس ذرائع کے مطابق تحریک انصاف، اے این پی، مسلم لیگ فنکشنل، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی سنی تحریک سمیت دیگر جماعتوں کے نمائندوں کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی، تاہم ایم کیو ایم کا دعوت نامہ منسوخ کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کراچی کی امن و امان کی صورتحال پر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا نقطہ نظر معلوم کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں حکومت کی پالیسی پر بھی اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں ایم کیو ایم کی شرکت منسوخ کرنے سے کراچی کے عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی۔ آل پارٹیز کانفرنس لیپا پوتی کے سوا کچھ نہیں، وفاقی حکومت نے بھی کراچی کے عوام کو مایوس کر دیا۔ کراچی پریس کلب میں ہنگامی پریس کانفرنس کے دوران ایم کیو ایم کے رہنما کا کہنا تھا کہ اجلت میں بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس اور کابینہ کے خصوصی اجلاس میں ایم کیو ایم کی شرکت منسوخ کرنے سے کراچی کے عوام کے اعتماد کو شدید دھچکا لگا ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ کراچی کی صورتحال اتنی دیگرگوں ہو چکی ہے کہ ہر دو گھنٹے بعد ایک شخص مارا جا رہا ہے۔ شہر میں ہر پارٹی کے مسلح گروہ کے علاوہ لسانی اور فرقہ واریت کے حوالے سے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جس میں تشدد کر کے مارنا بھی عام بات ہے۔ کئی مہینے پہلے اے این پی کے رہنما سینیٹر شاہی سید نے کراچی کو فوج کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تھا، اس کے بعد اب کراچی کے تاجروں نے یہ مطالبہ کیا۔ اس پر 27 اگست کو ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے بھی فوج بلانے کا مطالبہ کر دیا، جس پر ساری سیاسی جماعتوں نے مخالفت کی۔ البتہ شاہی سید نے سوال کیا کہ اگر سندھ حکومت فوج نہیں بلانا چاہتی تو پھر اس کا متبادل پیش کرے۔ کراچی میں بدامنی اور تشدد کی گوناگون شکلیں ہیں. باخبر افراد کا کہنا ہے کہ اس شہر میں بھتہ خوری ایک صنعت میں تبدیل ہو چکی ہے اور یہ بھی قتل و غارت گری کی ایک اہم وجہ ہے. اس کے علاوہ گینگ وار میں بھی لوگ مارے جاتے ہیں. سب سے بھیانک قتل سیاسی دشمنی کے نتیجے میں ہو رہے ہیں, جبکہ فرقہ وارانہ تشدد بھی بڑے پیمانے پر جاری ہے. بدامنی کی ان گوناگون شکلوں اور وجوہات کو دیکھتے ہوئے, جہاں ایک طرف سیکیورٹی کے انتظامات کو درست کرنے کی ضرورت ہے, وہیں یہ بھی ضرورت ہے کہ تشدد کی وجوہات سے نمٹا جائے. انتہا پسند گروہوں کے سلسلے میں سیاسی وجوہات کی بنا پر بڑھتی جانے والی نرمی کو بھی تشدد کی ایک بڑی وجہ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. چنانچہ انتہا پسند گروہوں کے سلسلے میں ہر سیاسی جماعت کے اندر یہ سیاسی عزم ہونا ضروری ہے کہ ملک کو ان طاقتوں کے چنگل سے نجات دلانا ہے, کیونکہ بدامنی اور تشدد ایک ایسی لعنت ہے جو ملک کے تمام شعبوں کو متاثر کرتی ہے. اس سے سیاسی و سماجی شعبوں کے ساتھ ہی اقتصاد اور معیشت بھی بری طرح سے متاثر ہوتی ہے, اور پاکستان کی معیشت اس کی گواہ ہے.
یا ناظرین, اب سیدھے چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو, جہاں پر موجود ہیں ممتاز طرز نگار پروفیسر عمر ریاض عباسی صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
پروفیسر ریاض عباسی صاحب, ہمارا موضوع گفتگو یقیناً آپ جانتے ہیں, اور ابھی آپ نے ہماری رپورٹ میں زیادہ فرمائی. میں یہ پوچھنا چاہوں گا, جو کل اجلاس ہونے والا ہے اسلام آباد میں, اگرچہ آج وزیر اعظم نے کراچی میں بھی اجلاس کیا, لیکن جو کل جس کی ڈیٹ بہت پہلے دی جا چکی ہے, کیا اس میں کسی مؤثر اور فیصلہ کن فیصلہ لیے جانے کی توقع ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اگر اس کو ماضی کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہ ایک لولی پاپ ہے, کوئی نئی چیز یا بریکنگ تھرو جو ایک کراچی کے عوام کے لیے بریک تھرو ہے, کوئی خوش آئند بات ہے, وہ سامنے نہیں آئے گی. یہ صرف رجسٹر کی حد تک, پیپرز کی حد تک, میڈیا کی حد تک ساری باتیں ہو رہی ہیں. کراچی کے ایشو کو اصل میں کوئی ٹیکل کر ہی نہیں رہا, سوائے میڈیا کے. وہ اسپیکٹ دکھا رہے ہیں جرائم پیشہ عناصر کے حوالے سے یا دیگر جو امور ہیں ان کے حوالے سے. اب اس کی ہسٹورک بیک گراؤنڈ میں جانا ہوگا. قائد اعظم محمد علی جناح نے جب افتتاح کیا تھا اسٹیٹ بینک کراچی کا, تو سب سے پہلی بلڈنگ وہاں پہ بنی, اور آپ سے پوچھا گیا کہ اس کو آپ اسٹیٹ بینک کو یہاں پہ کیوں مطلب اس کا لانچ کر رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا تھا کہ کراچی از اکانومک ہب آف پاکستان, کہ یہ پاکستان کا اکانومک ہب ہے. اور آپ کو پتہ ہے گوادر بھی ہے ساتھ, اور ساتھ ایک طرف سمندر ہے, تو ہماری جتنی بھی شپنگ ہے, ہماری ٹریڈ ہے, ہماری اکانومی ہے, وہ سارا سیکٹر اسی پہ ریلائی کرتا ہے. تو کراچی کے اندر دو فیکٹر ہیں, انٹرنل بھی ہے, ایکسٹرنل بھی ہے. ایکسٹرنل جو عالمی طاقتیں ہیں ان کے ہیں کہ پاکستان کی معیشت پر کاری ضرب لگائی جائے, اندرونی طور پہ اسے کمزور کیا جائے. انٹرنلی وہاں پہ ملٹی سائیڈڈ فیکٹرز ہیں, جن میں ریلیجس فینومینا بھی ہے, سیکٹیرین وائلنس بھی ہے, بھتہ خوری بھی ہے, اور پولیٹیکل ڈویژن بھی ہے, اور اسی طرح وہاں پہ گینگ وار کا سسٹم ہے, لینڈ مافیا ہے. تو وہاں پہ کرمینلز کی ایک سیف ہیون آپ کہہ سکتے ہیں وہ بن چکی ہے. اس سے صرف پرائم منسٹر صاحب نہیں نمٹ سکتے, ساری سیاسی جماعتیں نہیں نمٹ سکتی. پرابلم یہ ہے کہ کوئی کراچی کے ایشو کو دیکھ ہی نہیں رہا. ہر پارٹی کا ایک ملیٹنٹ گروہ ہے, وہ کراچی کے اندر کام کر رہا ہے. اس پہ کوئی نہیں کھل کے بات کرے گا, لوگ ڈرتے ہیں, کراچی جانا ہوتا ہے, کبھی کبھار کوئی کام پڑ جاتا ہے. دیکھیں, پولیٹیکل پارٹیز کے بھی ونگ ہیں, اور وہ ملیٹنٹ ونگز بھتہ خوری میں ملوث ہیں, نمبر ون. نمبر ٹو, ریلیجیس فیکٹرز ہیں, سیکٹیرین وائلنس ہے وہاں پہ. لشکر جھنگوی کا ایک بہت بڑا آپریشنل جو پارٹ ہے وہ کراچی سے لانچ ہو رہا ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. ٹی ٹی پی پاکستان, تحریک طالبان پاکستان کے کچھ جو بڑے خطرناک ملزمان ہیں یا گروہ ہے جن کا انٹر لنک بڑا کلوز ہے القاعدہ کے ساتھ, وہ کراچی میں کام کر رہا ہے. تو بھائی, آپ کو کابینہ کے اندر بیٹھ کے صرف سٹیک ہولڈرز جو ہیں انہی کو بلا کے کراچی کے حوالے سے کوئی ڈیسیژن نہیں لینا. اب کراچی میں میجر سرجری کی ضرورت ہے, اور وہ سرجری پاکستان آرمی کی انوالومنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی. یو ول ہیو ٹو کنسیڈر اے نیو جنرل نصیر اللہ بابر. آپ کو ایک نیا جنرل نصیر اللہ بابر لانا ہوگا, جو لاش کے بدلے میں لاش بھیجے, جو ہاتھ کٹے ہوئے ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ بھیجے, جو کٹے ہوئے پاؤں کے بدلے میں کٹا ہوا پاؤں بھیجے. وہ نصیر اللہ بابر جس نے کراچی کو کلین کیا تھا جرائم پیشہ عناصر سے, آج اس جیسے دلیر اور حوصلہ مند شخص کی ضرورت ہے. تو ملٹری آپریشن ہونا چاہیے, بلا امتیاز ہونا چاہیے. جب تک پولیٹیکل پارٹیز کے ونگز ختم نہیں ہوتے, سیکٹیرین وائلنس کو واش آؤٹ نہیں کیا جاتا, टीटीपी के वहां पे कमर नहीं तोड़ी जाती, तो इंटरनली जब तक उसको साफ नहीं कर सकते आप, एक्सटर्नली थ्रेट्स मौजूद रहेंगे। तो मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब का वहां जाना, मीटिंग्स करना, एमक्यूएम का बाइकआउट करना, और फिर कल प्राइम मिनिस्टर साहब का कैबिनेट के इजलास में मेरे ख्याल में टारगेटेड ऑपरेशन की बात करना जिसमें रेंजर्स पुलिस होगी, वही पुराना, अब यूं यू कैन से कि पुरानी शराब नई बोतल में बेची जाएगी। अब ये कराची का लुबे लुबाब जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब अनाउंस करेंगे, शराब पुरानी होगी बोतल नहीं होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां बदलते रहते हैं चेहरे, यहां निजाम नहीं, यहां फेसेस जो हैं वो चेंज होके आते हैं और वहां पे निजाम कोई नहीं होता। तो गले सड़े निजाम ने इस कराची बेचारे को भी ताफुन ज्यादा कर दिया है, लाशें गिर रही हैं। तो मुझे एज ए एनालिस्ट, एज ए इम्पार्शल एनालिस्ट, गैर जानिबदार तज्जिया निगार के तौर पर वजीर आजम के इस विजिट से और कल के फैसले से या आने वाले फैसले से कोई हौसला अफजा, उम्मीद की किरण कराची के लिए नजर नहीं आती, बल्कि मेरे माइंड के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर साहब के टूर के बाद कराची के हालात मजीद खराब होंगे।
जी, मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में। चलते हैं लंदन स्टूडियो जहाँ पर मौजूद हैं बैरिस्टर यूसुफ अख्तर साहब, जो पाकिस्तान के हालात पर गहरी नजर रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
जी वालेकुम अस्सलाम।
जी बैरिस्टर साहब, इस वक्त एक कराची के अमन अमान के ताल्लुक से और वहाँ अमन अमान की बहाली और हालात को बेहतर बनाने के ताल्लुक से जो इख्तलाफी मसला खुलकर सामने आया है, वो आया फौज कराची में तैनात की जाए या ना की जाए। जाहिर है कि इसमें अलग अलग नज़रियात पाए जाते हैं, जैसा कि आपने सुना उमर रियाज अब्बासी साहब कह रहे थे कि मिलिट्री ऑपरेशन नागुजीर और लाजमी है, नसीरुल्ला बाबर जैसा एक जनरल चाहिए जो कराची को क्लीन अप करे, आप क्या कहते हैं?
जी हाँ, देखिए ये तजवीज़ जो है फौज की, ये इस मरतबा स्ट्रेंजली एनफ ये एमकेएम की तरफ से आई है, जो माजी में किसी भी फौजी इकदाम के खिलाफ थे, क्योंकि 1992 में जो फौजी इकदाम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में हुआ था, उसका निशाना या टारगेट जो था या उसकी जद जो थी वो ज़्यादातर एमकेएम पर पड़ी थी और हज़ारों लोग जो उसमें मरे थे। तो जब से एमकेएम इस बात पर खाइफ थी कि फौज जो है उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई ना करे, लेकिन इस मरतबा कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन साहब ने यहीं लंदन से बैठकर इस चीज़ का मुतालबा किया है कि कराची को फौज के हवाले किए। उससे पहले एएनपी भी कह चुकी है और वहाँ की ताजर बरादरी भी ये कह रही है, लेकिन मुस्लिम नून और तहरीक इंसाफ जो हैं वो गालिबन इस चीज़ के हक में नहीं है कि वहाँ फौजी कार्रवाई कोई भी की जाए या ऑपरेशन किया जाए। उसकी कुछ वजूहात हैं और उसकी वजूह के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है।
चलते हैं कराची स्टूडियो जहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर और बुज़ुर्ग तज़िया निगार प्रोफेसर शमीम अख्तर साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे मिजाज?
जी अल्लाह का शुक्र है। प्रोफेसर साहब, कराची, जाहिर है कि आप कराची में मौजूद हैं, वहाँ के हालात यकीनन आप बहुत बेहतर जानते होंगे, कराची के आवाम क्या चाहते हैं, फौज बुलाई जाए या ना?
देखिए, जब पुलिस और रेंजर, रेंजर को कहते हैं कि एक नीम फौजी इदारा है और इसका जो कंट्रोल है वो फौज के हाथों में होता है, इसी कमान बार सूरत वो सूबे को आर्यतन दे दी गई हैं और सूबे के हिदायत पे वो काम करते हैं, लेकिन उनकी कमान फौज के हाथ में होती है। तो नीम फौजी इदारा तो इस वक्त काम कर रहा है और वो बिल्कुल गैर मुअस्सर हो चुका है। जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है तो पुलिस के हौसले इतने पस्त हो चुके हैं, एक तो पुलिस की जो भर्ती हुई है उसमें सियासी सरपरस्ती के तहत लोग भर्ती किए गए हैं, न कि उनकी काबिलियत और पेशावराना सलाहियत के बिना पे। उसके अलावा क्योंकि इनकी सियासी वाबस्तगियाँ हैं तो इनके अंदर उसके अलावा बदनवानी का अंसर बहुत गालिब है और आप देखते हैं कि आए दिन ये बेगुनाह लोगों को मार देते हैं, जाली मुकाबले में लोगों को मार देते हैं, लेकिन असल मुजरिम पे हाथ नहीं डालते और अगर उसे अदालत में ले भी गए तो चालान उसका इस तरह से नहीं बनाते कि अदालत के सामने उसको सजा हो जाए, नहीं, शहादत फराहम की जाती है। और आपने ये भी देखा होगा कि मुल्जिमान अदालत से फरार हो जाते हैं, जाहिर सी बात है पुलिस की गफलत के हिमा से होता है ऐसा। और अब तो जनाब जेल तोड़ के, जैसा कि डेरा इस्माइल खान में हुआ है, लोग फरार हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि पुलिस और सिविल अदारे और नीम फौजी अदारा यानी रेंजर, ये बिल्कुल गैर मुअस्सर हो चुका है। या तो इनके अंदर बदगुमानी का अंसर शामिल है, या सियासी वाबस्तगी के बिना पे ऐसा करते हैं, या शायद कोई नादीदा गैर मुल्की ताकत के जेर असर ये हैं, जबी सही मानों में जो मुलजिम होते हैं उन पर हाथ नहीं डालते। ऐसी सूरत में अवाम फौज की तरफ देखते हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह से क्वेटे में हजारा बिरादरी के साथ जो उनका कत्लेआम हुआ, बल्कि मैं कहूँगा उन्हें खुशी उनकी हो रही है, तो वहाँ पुलिस और लेबीज और रेंजर ये क्या कर रहे हैं? बिल्कुल गैर मुअस्सर हो चुके हैं। वहाँ के लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि हम जनाजे ही नहीं उठाएंगे जब तक फौज ना आ जाए। तो ये न सिर्फ क्वेटे की आवाज़ है बल्कि कराची के लोगों की आवाज़ है, और उसका सबूत ये है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो अभी तक फौज की तैनाती की मुखालफत कर रहा था, वो मजबूर होकर ये कहने पे आमादा हो गया कि फौज को यहाँ तलब किया जाए। और फौज अपनी फौज है, कौमी फौज है, इससे कौम डरती क्यों है? सियासी रहनुमा जो हैं अपनी नाहली को छुपाने के लिए, से पर्दा डालने के लिए फौज को चाहते हैं कि उसके किनारे लगा दें। अभी देखिए जो इंतखाबात हुए थे, उन इंतखाबात में लोगों का मुतालबा ये था कि पोलिंग बूथ के अंदर फौज तैनात की जाए। क्योंकि ज़िमनी इंतखाब में जब फौज तैनात की गई तो बदगुमानी के वाकयात और बेईमानी के वाकयात और छीना जब्ती के वाकयात न होने के बराबर थे। तो फौज से आखिर हम अपनी कौमी फौज से खायब क्यों हैं? मैं समझता हूँ कि ये तमाम उन निहत्ते और खामोश अक्सरियत का मुतालबा है, न सिर्फ कराची में और क्वेटे में बल्कि पाकिस्तान और खैर पख्तूनख्वा और तमाम सूबों में जहाँ जहाँ लाखों ये काबू में नहीं आ रही है, कि फौज को तैनात किया जाए।
जी बहुत शुक्रिया। एक बार फिर लंदन स्टूडियो चलते हैं। बैरिस्टर साहब, आप क्या फरमाएंगे कि क्या फौज को तैनात किए जाने की जो मुखालफत की जा रही हुकूमत की तरफ से, उनके पास कोई ठोस दलील है इस सिलसिले में?
जी, आपने पहले भी जब मैं इससे बात कर रहा था वो बात मुनक़ता हो गई थी तो मैं उसको पूरा नहीं कर सका था। मैंने जैसे अर्ज किया कि दो तीन जमातें, जैसे MQM है और वहाँ के ताजिर हैं, और ANP जो है वो तो चाहती है कि वहाँ फौज आनी चाहिए, क्योंकि हालात इतने उनके मुताबिक दिगरगू हो गए हैं कि किसी के बस की बात नहीं है, ख़ासतौर पर पुलिस और रेंजर्स की। लेकिन दूसरी जमातें जिसमें हुकुरान जमात भी शामिल है, तहरीक इंसाफ है और कुछ और हैं, वो ये नहीं चाहते। उसके पीछे क्या खदशात हैं ये देखना है। उसके लिए मैं आपसे अर्ज करूँ, अगर एक मिनट मुझे दें
जी,
कि लोगों का ख्याल है कि यहाँ पर जो अमेरिकन और दूसरी रेशदवानियाँ हैं कराची में बहुत बढ़ गई हैं, और उनका ख्याल ये है कि इसको पाकिस्तान से किसी तरह अलहदा किया जाए अब या मुस्तकबिल करीब में। तो जो जमातें इस वक्त मुखालफत कर रही हैं वो ये समझती हैं कि क्योंकि 19,000 कंटेनर्स जिसमें नेटो का असला था वो गायब हो गए, और उसमें बेतहाशा असला था वो सारा फैल गया, और वो कराची अब एक बारूद पर बैठा हुआ है। तो वो ये समझते हैं कि अगर फौज को इन्वॉल्व किया गया तो किसी तरह पाकिस्तान के दुश्मन वो उसको को बहाना बनाकर और फौज को पुलिस से और आवाम से लड़ा देंगे, और उसके नतीजे में बैरूनी मुदाखलत का खदशा वहाँ मौजूद है। इसलिए वो लोग जो हैं हुब्बुल वतन वो इनकार कर रहे हैं। हम समझते हैं कि अगर इस सिलसिले में अगर हुकूमत खातिरख्वाह इकदामात करे और इस किस्म की जो खदशात हैं उनका अजाला करे तो फिर फौज को आ जाना ही बेहतर है, क्योंकि उसके अलावा काम नहीं है। ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि उसको आ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ सियासी मसलियतें और दूसरे भी जितने माफियाज हैं वो, और लिसानी और मसलकी और जिस किस्म के वहाँ तनाज़ात हैं और इख्तलाफात हैं, वो अब किसी के बस की बात नहीं रहे। लेकिन اگر وہ چاہتے ہیں نواز شریف صاحب اور حکومت یہ چاہتی ہے تو ایک مرتبہ موقع اور دے دیں پولیس کو اور رینجرز وغیرہ کو باقاعدہ اختیارات دے کر، لیکن اس ضمن میں اس بات کی ضمانت دی جائے کہ کسی بھی قسم کی مداخلت پولیس کے اور رینجرز کے کاموں میں نہ کی جائے، جیسا کہ بار بار ایم کیو ایم وغیرہ اور دوسری جماعتیں کہہ چکی ہیں کہ جب بھی پولیس کوئی کام کرنا چاہتی ہے، بلکہ خود پولیس نے یہ کہا کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں افیکٹولی اور مؤثر تو ہمارا تبادلہ کر دیا جاتا ہے، وہ سپریم کورٹ میں بھی کہا ہے اور ویسے بھی کہا ہے، تو اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر یہ کام پولیس کے ہاتھوں ہو جائے اور رینجرز کے ہاتھوں ہو جائے فوج کو انوالو کیے بغیر تو وہ بہت زیادہ بہتر رہے گا، لیکن اس کی موقع بھی دے دیا جائے، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر لامحالہ آخری ایسے لاسٹ ریزورٹ جسے کہتے ہیں اس میں اگر فوج کو بلانا چاہے تو بلا لیا جائے، لیکن جو خدشات ہیں ان خدشات کو بھی پیش نظر ضرور رکھا جائے، اور اس سے پہلے فوج کو بلوانے سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ وہاں ڈی ویپنائزیشن ضرور ہو تاکہ وہ تمام ہتھیار جو لوگوں نے اکٹھے کیے ہیں مختلف جماعتوں کے گروہوں نے، عسکری ونگز نے اور مافیاز وغیرہ نے جو کیے ہیں اور جو جرائم پیشہ افراد ہیں، ان کسی کے ہاتھ میں وہ اسلحہ نہ ہو تاکہ وہ ٹو فش ان دی ٹربل واٹر جسے کہتے ہیں وہ نہ کر سکے، اور اس کے بعد ہی فوج کو انوالو کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس موقع پر اگر حکومت نہیں چاہتی تو پہلے تو مشاورت سب سے کرے۔ اب یہ انتہائی غلط بات تھی کہ پہلے تو ایم کیو ایم کو انہوں نے اپنا دعوت دے دی اور اس کے بعد عین موقع پر ستار صاحب کو منع کر دیا کہ وہ اس میں کیبنٹ کی میٹنگ میں نہیں آئیں گے، اس سے پہلے ہی نہ بلاتے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں غالباً کہ ایم کیو ایم کی نمائندگی گورنر سندھ کریں گے، تو اگر یہی بات تھی تو فاروق ستار صاحب کو بلانا ہی نہیں چاہیے تھا، جو خاص الائی بھی ہیں اور انہوں نے حال ہی میں صدارتی انتخابات میں این لیگ کا ساتھ دیا اور ممنون حسین صاحب جو نئے صدر بنے ہیں ان کو ووٹ دیے، تو ان پر بھی اعتماد کرنا
جی
چاہیے،
ویسے میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔
اقدامات نہ کیے جائیں جی، اس قسم کے اقدامات نہ کیے جائیں جس سے غلط فہمی پہنچے کہ کراچی کی 85% جو مینڈیٹ ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس ہے، ان کو کسی طرح بھی نظر انداز کرنا کسی کے بھی حق میں نہیں ہے۔
جی جناب عمر ریاض عباسی صاحب، ایک خدشے کا اظہار کیا ابھی بیسٹر صاحب نے اپنی گفتگو میں کہ 19,000 ہتھیاروں کے کنٹینرز غائب ہو گئے، اگر فوج کے حوالے کر دیا گیا کراچی کو تو خدشہ اس بات کا ہے کہ جو امریکہ اور اس کی اتحادی قوتوں کے جو ایجنٹ ہیں وہ کہیں پولیس رینجرز اور عوام کو آمنے سامنے نہ کر دیں ان اسلحوں کی بنیاد پر، تو یہ خدشہ کتنا معقول معلوم ہوتا ہے اور اسی بنیاد پر فوج کو نہ آنے دیا جائے یہ دلیل پیش کی جا رہی ہے؟
آپ نے سوال کر دیا تو یہ آج تک کسی کو نہیں پتا، میں ایک بریکنگ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہاں میڈیا میں تو خیر ہم نہیں کر سکتے، سچویشن ایسی ہوتی ہے۔ سچویشن یہ ہے کہ یہ جو کنٹینرز ہیں 19,000، ان میں سے مور دین 50% کنٹینرز جو ہیں وہ امریکہ کے تھرو سعودی عربیہ کی ایما پر کچھ ملیٹنٹس کو وہاں تقسیم کر کیے گئے جو وہابی اسکول آف تھاٹ کے ہیں اور اسے آگے جن کے لشکر جھنگوی سے اور دیگر لوگوں سے تعلقات ہیں، یہ اسلحہ تقسیم کیا گیا کراچی کو پھاڑنے کے لیے اور پاکستان سے الگ کرنے کے لیے۔ دیکھیں بھائی میرے کہہ رہے تھے کہ جو ہے پاکستانی فوج جو ہے وہ اس سے لوگ ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پاکستان کی فوج ہے، یہ خود کش حملہ آوروں کے خلاف لڑ رہی ہے، یہ سعودی عرب کی فوج نہیں ہے کہ جو خود کش حملہ آور تیار کر کے شام بھیج رہی ہے، فوج فوج میں فرق ہوتا ہے۔ پاکستان کی فوج خود کش حملہ آوروں کے خلاف لڑتی ہے، جرائم پیشہ عناصر کے خلاف لڑتی ہے، وہ سعودی عرب کی فوج ہے کہ جو اپنے لوگوں میں جو ہے وہ ڈالرز تقسیم کر کے خود کش حملہ آور تیار کر کے دوسرے اسلامی ممالک کے خلاف بھیجتی ہے۔ تو افواج میں ذرا فرق رکھا کریں، بعض فوجیں اسرائیل اور امریکہ کے لیے کام کرتی ہیں، پاکستان کی فوج پاکستان کے عوام کے لیے کام کرتی ہے۔ تو یہاں پر سعودی ایما پر جو اسلحہ یہاں پہ نیٹو کا غائب ہوا اس میں نیٹو انوالو ہے، اس میں امریکہ انوالو ہے، سی آئی اے انوالو ہے۔ میں کارپٹ کے نیچے آپ چیزیں چھپائیں گے میرے دوست تو کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کے کتنے پروگرامز میں علی عباس بھائی آپ گنوائیں پیٹتا رہا ہوں کہ جب تک سعودی عرب کا قبلہ درست نہیں ہوگا، آل سعود سے جان نہیں چھوٹے گی، امت مسلمہ کا اطاعت نہیں ہوگا، تو آج دیکھیں نا آپ سعودی عرب کیا کر رہا ہے، کیا رول پلے کر رہا ہے۔ تو ہم انالیٹک اپروچ رکھتے ہیں، ہم پوری ہسٹری کو دیکھ کے بات کرتے ہیں، ایموشنل نہیں ہوتے۔ تو کراچی کے معاملے پر میرے خیال میں فوج کو آنا چاہیے، گورنر وفاق کی علامت ہوتا ہے، وہ ایم کیو ایم کا نمائندہ نہیں ہے میرے بھائی، جیسے صدر جو ہے وہ نون لیگ کا نہیں ہے، فیڈریشن آف پاکستان کا ہے۔ तो MQM को वहां बुलाना चाहिए था। ठीक है वो स्टेक होल्डर्स हैं, मैंडेट उनके पास 85% है, जैसा तैसा है, वो धांधली वाला है, धान वाला है, धौंस वाला है, वो निजाम का हिस्सा है, लेकिन मैं ये कहता हूं फिर भी उन्हें बुलाना चाहिए था। MQM की बहुत बड़ी फॉलोइंग है कराची के अंदर, जब एक बहुत बड़े मेजर स्टेक होल्डर को आप साइड पर रखेंगे तो उसके बगैर आप कराची का कैसे फैसला करेंगे। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट भी जो प्रो तालिबान गवर्नमेंट जिसे मैं कहूंगा, पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत कहती है, वो कराची के इशू में इन्वॉल्व होकर तालिबान को एक और सेफ पैसेज दे रही है तैयारी के लिए। तो खुदारा कराची में तालिबानाइजेशन के खात्मे की गवर्नमेंट बात करती ही नहीं है, लश्कर जंगवी को फुल स्टॉप लगाने की बात नहीं करती। मैं कितने लीडर्स का नाम लूं जो लश्कर जंगवी के ऑपरेशनल हैं, जो मुहर्रम के अंदर जुलूसों पर हमले करते हैं, क्या वो कराची में नहीं बैठे, खारादर में नहीं बैठे, सोराब गोट में नहीं बैठे, मुख्तलिफ जगहों पर नहीं बैठे? सब जानते हैं भाई, कोई सच नहीं बोलने वाला। अल्लाह ताला जुबान दी है तो सच बोला करें, सच इस कौम को बताएं। जब तक गटर के ऊपर कारपेट डालेंगे मसाइल हल नहीं होंगे। मजहबी इंतहा पसंदी कराची का गढ़ है, उसको खत्म करें, लश्कर जंगवी को खत्म करें, तालिबानाइजेशन को खत्म करें, लैंड माफिया को खत्म, ये सारी चीजें क्या पॉलिटिकल पार्टीज खत्म करेंगी? नहीं, फौज के बगैर हल मुमकिन नहीं है। फाइनल डिसाइसिव डिसीजन प्राइम मिनिस्टर विल हैव टू टेक कि फौज वाहिद अल्लाह, अवाम उसके शाना बशाना खड़े होंगे। माए लाशें उठा कब तक उठाती रहेंगी?
मैं फिर हाजिर हूँ,
फौज आए और वो लाशें उठना बंद हो जाए।
जी मैं फिर हाजिर हूँ, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है MQM के मेंबर ऑफ कौमी असेंबली जनाब मोहम्मद रेहान हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम।
हाशमी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने बुलाया था फारूक सत्तार साहब को मुलाकात के लिए, आपकी जमात ने इनकार कर दिया वन ऑन वन मुलाकात करने से, बराह रास्त मुलाकात करने से, क्यों?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये साबित शुदा चीज है और इस बात पर तमाम लोग मुत्तफिक होंगे, खास तौर पे बाय इलेक्शन के बाद जो कि फौज की जेर निगरानी मुनक्किद हुआ, अब से अभाम नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में रहने वाले पार्टी को, किसी भी पार्टी के नुमाइंदे को, कि मुशायरा का मैंडेट जारी मैंडेट है जिसके बारे में बड़े वाजेला किया गया था, इसमें कोई अभाव नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि मुशायरा वाली मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पर सिंध के अर्बन एरियाज में वाजे तौर पर मैंडेट रखी है, वाजे तौर पर नुमाइंदगी करती है अर्बन एरियाज की, तो तवक्का जो हम कर रहे थे फेडरल गवर्नमेंट से वो ये कि वो मुशायरा कौमी मूवमेंट को ऑन बोर्ड लेगी और ऑन बोर्ड लेगी मुशायरा कौमी मूवमेंट बात करेगी, क्योंकि विक्टम्स जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग हैं, विक्टम्स मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वोटर्स हैं। हमें तो कभी कभी ये गुमान होता है कि शायद हम इत्तेहाद बैनुल इस्लामी के लिए आवाज उठाने वाले लोग हैं, कि शायद हम क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट जो मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ बड़े क्लियर साफ लेकर उनका नाम लेकर उन पर अंगुश नुमाई करके बोलने वाले लोग हैं, हम मुहर्रमों के जुलूस के आगे खड़े होने वाले लोग हैं, शायद ये बाबा तरीके से हमारी नस्ल कुशी और हमारे खिलाफ ये तारीखें मुरतब की जा रही है जिस तरह बांधने के ऑपरेशन में की गई थी। और ये बात यकीनी तौर पे मतलब तशवीश का बायस है कि यहाँ पर आपने देखा कि नया शोशा उठाया गया, जिस तरह जिनापुर का शोशा उठाया गया था, एक ऑपरेशन जो कि कंडक्ट करना था 72 बड़ी मछलियों के खिलाफ, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो उस वक्त मुहाफिज़ कौमी मूवमेंट थी और खास तौर पर उर्दू बोलने की वालों की जानिब डाइवर्ट कर दिया गया। इसी तरह मौजूदा हालात में भी, क्योंकि रिस्टेंस भी हमें हमारे वोटर्स हमारे सपोर्टर्स यहाँ पर रहने वाले लोग मुतासर हो रहे हैं भत्ता माफिया से, पर्ची माफिया से, और जब हम आवाज बुलंद कर रहे हैं कि जनाब इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, सूबाई गवर्नमेंट जो है इनकी पुष्ट पुनाही कर रही है, पुलिस को पॉलिटिसाइज किया हुआ है और कोई क्लियर एक्शन नहीं लिया जा रहा, जबकि उनके स्टांस के मुताबिक तो लग गया ये रहा है कि हमारे ही खिलाफ मुहाज लड़ाई शुरू कर दी गई है। कराची या सिंध के अर्बन एरियाज कोई लूटा मारी का इलाका नहीं है कि जिसका जो मर्जी आए आए यहाँ पर लूट रिपोर्ट करे और चला जाए। खुशकिस्मती देखें कि यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ही नॉन परमानेंट रेजिडेंट पे मुश्तमिल है और जो यहाँ पर लूटा मारी करने आ रहे हैं, जो भत्ता माफिया है, जो गैंग्स हैं, वो भी कराची के नॉन परमानेंट रेजिडेंट हैं। और जो
रेहान साहब, मैं आपसे जी रेहान साहब माफ कीजिएगा, मैं आपसे पूछ रहा था कि फारूक सत्तार साहब ने इनकार क्यों किया आज की मुलाकात से, अगर मुलाकात करते तो शायद कोई रास्ता निकलता।
देखिए कम से कम सियासी और जमहूरी पार्टी होने के नाते इतना तो हक है ना हमें कि जब आपने काबीना की मीटिंग में हमें नहीं बुलाया, वहां पर अहम डिसीजन लेने हैं, तो वन टू वन मीटिंग का क्या मतलब, जहां पर डिसीजन लेना है, जहां पर फैसला होना है, आप मीटिंग में बुला रहे नहीं है, और जिस मीटिंग में फैसला नहीं होना, जिसमें कुछ हासिल नहीं है, उस जाने का मकसद हमारी समझ में नहीं आया कि क्या मकसद है उसका।
जी मैं अगला सवाल भी आप ही से करना चाहूंगा कि एक जमाने में तो आज आप लोग यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM फौज की तैनाती के खिलाफ थे और अब भरपूर हिमायत और वकालत कर रहे हैं, ऐसा क्यों?
देखिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए ये फौज को सलब करने का मुतालबा इतना अच्छा मुतालबा यकीनन नहीं है, क्योंकि एक मैंडेट होल्डर जिसके पार्लियामेंटेरियन लोग सूबाई असेंबली में भी, नेशनल असेंबली में भी, सेनेट में भी, और वो पिच पे पहुंचा दिया गया कि हम लाभ भला इस बात का इजहार कर रहे हैं कि फौज को तलब किया जाए, क्योंकि हमारी नजर में फौज के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। जहां पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अरबों रुपए यहां पर सिंध गवर्नमेंट से ले रही है, मगर हासिल क्या हो रहा है? लाभ की सूरत में मिल रहा है, अगवा बराए तावान बढ़ता जा रहा है, क्रिमिनल्स और गैंग्स और माफिया जो है वो स्ट्रांग होल्ड करके बैठे हुए, एक्सट्रीमिस्ट मजहबी इंतहा पसंद अपने लोग रियाज बना के बैठे हुए, और उनके साथ लगता है मतलब आप लॉ इन्फोर्समेंट उन इलाकों में तो जाए, जो कराची के पुरअमन इलाके हैं वहां पर तो अगर एक गोली भी चल जाए तो वहां पर लश्कर किसी हो जाती है, और अगर जिन जगहों से रॉकेट लॉन्चर चल रहे हैं, लाशें बरामद हो रही हैं, तबाहशुदा लोग बरामद हो रहे हैं, वहां पर उनकी जाने की हिम्मत नहीं है। ये तो अजब मतलब एक एम्बिग्यूटी है। हमने इस बात का मुतालबा किया कि जनाब हमारी नजर में अब फौज के अलावा कोई ऐसा इदारा नहीं है, और हमने कौन सा ऐसा अजीबोगरीब मुतालबा कर दिया? लोगों की जाने जा रही है, यहाँ पर फरमाइशी प्रोग्राम के तहत वोटर लिस्ट के इंदराज के लिए फौज को बुला दिया जाता है, कभी बाय इलेक्शन में शुभहात को क्लियर करने के लिए फौज को बुलाया जाता है। तो ये तो सिर्फ लोगों की जानों का मामला है, कोई मामूली मामला नहीं है, और मुतहरक मूवमेंट जमहूरी और सियासी जमात होने के नाते अगर इस बात का मुतालबा कर रही है तो हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। हम समझते हैं कि फौज न्यूट्रलिटी की बुनियाद पर अगर ऑपरेशन को कंडक्ट करती है या मॉनिटर करती है तो उसमें तमाम चीजें वाजे हो जाएंगी, क्रिमिनल के खिलाफ, गैंग्स के खिलाफ, एक्सटॉर्शन मार्क के खिलाफ वाजे तौर पर ऑपरेशन होना चाहिए। जो दो एरियाज हैं जो मजहबी इंतहा पसंद है, जो मजहबी जनूनी है, उनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। मैं एक और आपके प्रोग्राम के तबसुम वादे कर दूं कि आपसे तकरीबन चंद साल पहले पीपल्स पार्टी के सहयोग में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई जब ये बात कह रहे थे कि जनाब इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन आ रहे थे नॉर्दर्न एरिया से, उनके अंदर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट मजहबी जुनूनी वो भी यहाँ पर आ रहे थे, तो हमारी बात को सीरियसली ले लिया गया, मजाक में लिया गया, और आज की हालत हो गई है जनाब कि यहाँ पर अपनी अदालतें लगाकर बैठे हुए हैं, यहाँ पर नो गो एरिया बन चुके हैं। तो ये बात बड़ी मतलब सोचने की है कि हमारी हम अगर पानी मांगते हैं तो हमें लस्सी पिलाया जाता है, हम लस्सी मांगते हैं तो हमें पानी में डुबो दिया जाता है, मतलब अजीब गरीब मखबता है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक वक्त आके मुतालबा कर रही थी फौज का, लेकिन हम क्योंकि जमहूरियत के तसल्लु को कायम रखने के लिए ये बात कह रहे थे कि जनाब अपना किबला दुरुस्त करें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, और हम हाला अगर इन्होंने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया, सूबाई गवर्नमेंट भी सीरियस सिस्टम नहीं आई, तो हमारा मैंडेट रखने वाली पार्टी होने के नाते हमने मुतालबा किया कि फौज के अलावा कोई चारा नजर नहीं आता।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिरूंगा आपकी खिदमत में। प्रोफेसर शमीम अख्तर साहब कराची में, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हुकूमत जो मुखालफत कर रही है उसके पास क्या दलील है और कितनी मुहकम और मुस्तहकम दलील मानी जा रही है हुकूमती हलकों में?
मैंने पहले ही आपसे अर्ज किया था कि हुकूमत जो है वो सियासी जमात की हुकूमत है। जाहिर सी बात है कि सियासी हुकूमत ये कभी नहीं चाहेगी कि उसकी ताबे इंतज़ामिया नाअहल करार दे दी जाए, और जहाँ तक कि पुलिस और रेंजर का ताल्लुक है, मैं बतफसील आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि इन्हें काफ़ी वक्त दिया गया, और बजाय इसके कि अपनी अहलियत बेहतर बनाते, हालांकि इनको कुछ साजो सामान भी जदीद नौयत का दे दिया गया है, इनको मौसलाती निज़ाम भी इनको फराहम कर दिया गया है, और इनको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी दे दी गई हैं जिसमें वो हूटर बजाते हुए रोप के साथ सड़कों पर निकल पड़ते हैं, लेकिन इनकी कारकर्दगी रोज़ बरोज़ बद से बदतर होती जा रही है, और अरमिया ये है कि लोगों की जानें जाती रही हैं, लोग मर रहे हैं, मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। तो देखिए, सबसे अहम चीज़ किसी हुकूमत की है अमन अमान का क़याम। और इंसानी ज़िंदगी से मोहतरम कोई शय नहीं है, मजहबन भी और कानून भी। तो अगर इनको मजीद मोहलत दे दी जाए पुलिस को अपनी कारकरी बेहतर बनाने की, तो हमें तो तजुर्बा ये बताता है कि कारकर्दगी में बेहतरी तो कुजा, ये बदतर होते जा रहे हैं
जी,
इनका निज़ाम बदतर होता जा रहा है और उसके नतीजे में इंसानी जाएँ ज़ाय हो रही हैं, क्योंकि एक इंसान का कत्ल पूरी बनियनों इंसान का कत्ल है। तो इंसानी जान बचाने के लिए फौज का तैनात करना नागुजीर हो गया है। और ये सियासी जमातें इस वजह से मुखालफत करती हैं कि अगर इनका हाथ है इस हंगामाराई बदमनी में बिलवास्ता है बिलावास्ता, यानी इस तरह से कि ये लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते और गिरफ्त नहीं कर सकते मुलजमों की, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की इनमें हिम्मत नहीं है, सियासी मसलहतें आ जाती हैं, तो फौज के नज़दीक तो कोई सियासी मसलहत नहीं होती। लिहाजा ये डरते हैं इस बात से कि अगर इनके आदमियों की गिरफ्त हो गई या इनकी नाहली मंदर आम पे आ गई तो अवाम इनके खिलाफ हो जाएंगे। और इन्हें इसका भी खदशा रहता है कि जहाँ इनकी नाहली साबित हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि भेड़िया आ जाए, यानी मेरा मतलब ये कि फौज को ये भेड़िया समझते हैं और वो इख्तदार संभाल ले, जैसा कि फौज ऐसा करती रही है। लेकिन जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि अहम तरीन जो मकसद है वो इंसानी जानों के ज़िया होने को बचाना है, लिहाजा फौज की तैनाती के अलावा मुझे और कोई तरीका नहीं
जी, बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर साहब लंदन में, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या फौज, मान लिया जाए कि फौज आ भी जाती है और अपने ऑपरेशन शुरू भी कर दिया फौज ने, तो क्या कराची के मसाइल का हल फौजी ऑपरेशन है?
देखिए, मसाइल का हल तो जो इस वक्त जो प्रॉब्लम्स हैं, हमें तो देखना है कि वो प्रॉब्लम सिविल इंतज़ामिया जो है, हुकूमत जो है, क्या वो उन पर काबू पाने की अहलियत रखती है, सलाहियत रखती है या नहीं। लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से और अब ख़ास तौर पर नए इंतखाबात के बाद हम ये देख चुके हैं कि सिविल इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और उसकी कई वजूह हैं। तो लेकिन जहाँ तक फ़ौज को बुलाने का ताल्लुक़ है, वो आईन की दफ़ा 245 के तहत सवाए सूबाई हुकूमत के की इस्तदा पर, उनकी दरख्वास्त पर वो आ सकती है, अस खुद नहीं आ सकती, ना मरकज़ अस खुद भेज सकता है। अगरचे हालात बहुत ही ज़्यादा दिगरगु हों तब और बात है, लेकिन वैसे रूटीन के तहत या आईन के तहत जो है वो सूबाई हुकूमत की दावत पर ही आती है। अब अगर सूबाई हुकूमत देना नहीं चाहती दावत उनको, तो फिर देखना यह है कि मरकजी हुकूमत के पास क्या चारहकार है, वो हालात को इसी तरह बिगड़ता देखते रहे या कुछ और इकदाम करे, तो उनको परसुएड करना पड़ेगा। और क्योंकि वो पूरे एक सूबे की हुकूमत पर बैठे हुए हैं, और जैसे कि अभी प्रोफेसर साहब ने भी फरमाया कि हर रोज़ 20-25-30 आदमी उसमें मरते हैं, और जो कुछ भी वहाँ हालात हैं हर किसी के सामने हैं। पुलिस भी बार बार एतराफ़ कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। तो अगर फौज ही उसका वाहिद हल है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि एक मरतबा फिर पुलिस को यानी पूरे इख्तियारात देकर और सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई इंटरफियरेंस के बगैर अगर पुलिस कार्रवाई करे, क्योंकि उनके हक में भी यही है, रेंजर्स के हक में भी यही है, हुकूमत के हक में भी यही है कि वहाँ फिलहाल फौज ना आए। लेकिन अगर उनके काबू में नहीं आते अगले 2-3 महीने, तो फिर फौज को बराबर चारहकार ही नहीं है। तो फौज जब आ जाएगी और इन तमाम मसाइल पर, जो भत्ताखोरों पर, जो अपना गैंग्स बैठे हुए हैं उन पर, और जो ख़ास तौर पर ये TTP वगैरह जो है, लश्कर जंग वगैरह जो है, इनकी अगर सर को भी कर सकें, तो वहाँ के मसाइल यकीनन बहुत हद तक हल हो जाएंगे। इस बात को ना भूलें कि अगर हम कराची की बात कर रहे हैं, तो वहाँ 85% मैंडेट MQM के पास है। अगर MQM कह रही है सबसे बड़े स्टॉक होल्डर, तो जो स्टेक होल्डर हैं कराची में, तो उनको नज़रअंदाज करना किसी सूरत सही नहीं है। और उनको वो काबीना की मीटिंग में बुलाकर और दोबारा उनसे कह देना कि तुम ना आओ, ये उनके साथ इंतहाई नाइंसाफ़ी की बात है। उनको बुलाना चाहिए, ऑन बोर्ड लेना चाहिए, कॉन्फ्रेंस में भी बुलाएं और काबीना की मीटिंग भी बुलाएं। उनके बगैर वहाँ मसले का कोई हल नहीं है।
बहुत शुक्रिया आपका।
बुलाना जो है वो आखिर में हो, लेकिन यह है कि उसके बाद उनको पूरे अख्तियार दिए जाएं और वो इन सब जो अनासिर हैं उनकी कलाकमा करें, उनको असर को भी करने के बाद हालात ठीक हो सकते हैं यकीन।
बहुत शुक्रिया आपका। रहन हाशमी साहब, अगर आप लाइन पर हो तो मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, मौजूद हैं? बज़ाहिर ऐसा लगता है कि टेलीफोन लाइन पर मौजूद नहीं है। चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो। उमर रियाज अब्बासी साहब, एक तजवीज़ ये भी आई है कि जैसा कि बैरिस्टर साहब कहते हैं कि एक बार फिर रेंजर्स और पुलिस को मौका दिया जाए, लेकिन उसके साथ मशहूर एक तजवीज़ ये है कि जो सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पर पुलिस में भर्तियाँ की गई हैं उनको ख़त्म किया जाए, तो क्या ये तजवीज़ किसी हद तक कारगर साबित हो सकती है कराची में बहाली अमन के ताल्लुक से?
देखिए, ये सियासी भर्तियों को ख़त्म कौन करेगा? पुलिस और रेंजर्स जो हैं वो सूबाई गवर्नमेंट के अंडर हैं और सुप्रीम कोर्ट इससे पहले वहाँ पे लार्जर बेंच तश्कील दे चुकी है। चीफ जस्टिस साहब ने एक आंख का इंसाफ करके वहाँ कराची के हालात को मजीद मेरे ख्याल में बिगाड़ा है। वहाँ नो गो एरिया ख़त्म करने गए, एक भी नहीं ख़त्म कर सके। तो जहाँ पे चीफ जस्टिस फेल हो गया, हमारा इंसाफ फेल हो गया, इतने हालात दिगरगू हैं वहाँ पे। ये सूबाई गवर्नमेंट के तो अपने SHOs वहाँ पे लगे हुए हैं, वो क्या हथकरियाँ ख़त्म करेगी? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी अमल दरामद नहीं हो रहा, तो कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं माने जा रहे। सूबाई हुकूमत के अपने इन्वॉल्वमेंट है, उनके अपने मफादात हैं, दीगर पार्टीज़ के अपने, तो फिर रहने दे, सारा फेलियर है ये स्ट्रक्चर पूरा। तो उसके ऊपर जाहिर है जब रियासत का वजूद खतरे में हो तो सियासत नहीं रियासत बचाओ, ये नारा होना चाहिए। तो रियासत बचाने के लिए फिर फौज को लाना पड़ेगा, उसमें किसी पार्टी की एफिलिएशन कोई मफाद नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में मैं आज आपके स्टूडियो में बैठ के कह रहा हूँ, फाइनल और डिसाइसिव इंक्लूजन ये होगा कि आर्मी एक्शन हो, मिलिट्री एक्शन हो। अगर ये एक्शन ना हुआ तो खुदा न खास्ता कराची के मामले में पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फौज बहुत देर कर जाएगी और चंद हफ्तों और चंद महीनों में पानी सर से गुजरने वाला होगा।
जी बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शमीम अख्तर साहब। हमारे पास दो मिनट का वक्त बचा है, मैं आपसे वही सवाल जो मैंने लंदन में किया था पूछना चाहूंगा कि अगर फौज फर्ज करें कि आ भी जाती है और वो ऑपरेशन कर भी देती है, तो क्या कराची के मसाइल का हल फौजी ऑपरेशन है?
देखिए, जहाँ तक के बदमनी को फ़रोग करने का ताल्लुक है तो फौज का तो एक बड़ा महदूद और मखसूस एजेंडा हुआ करता है कि बदमनी ख़त्म करें, तशद्दुद को ख़त्म करें, भत्ताखोरी को जड़ से उखाड़ फेंकें, अमन अमान बहाल कर दें। बाकी लोड शेडिंग है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, ये फौज का दरअसल नहीं है जनाब, यह तो हुकूमत को भुगतना है। और उस हुकूमत को जिसने इंतखाब में बड़े बड़े वादे किए हैं, आवाम को बड़ा सदभाग दिखाया है और इख्तदार में आने के दो महीने के बाद ही पेट्रोल बम ड्रोन की तरह से बरसा दिया लोगों पे और हर चीज़ की कीमतें बढ़ती चली जाएगी, जब बढ़ेगी तो तमाम अशिया सब की कीमतें बढ़ जाएंगी, तो गरीब गरीब तर होता जाएगा, अमीर अमीर तर होता जाएगा। ये दरअसल जनाब इस हुकूमत का है, फौज का दरअसल नहीं है। फौज सिर्फ बलवाइयों को गैर मुसल्ला करके अमन अमान करेगी, रौनक बहाल करना, लोड शेडिंग ख़त्म करना हुकूमत का काम है।
नहीं, मैं बदमनी के ताल्लुक से पूछना चाहूँगा, एक मुख्तसर जवाब चाहूँगा कि बदमनी के ताल्लुक से क्या पूरे तौर पर अमन बहाल हो जाएगा?
यकीनन फौज गैर जानबदार इदारा है, एक मुनज़्ज़म इदारा है, नज़्म ज़ब्त के साथ काम करता है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसकी कमान किसी पार्टी के सियासी रहनुमा की नहीं है, के हाथ में नहीं है, जिसकी नज़र हमेशा आइंदा इंतखाब पर लगी रहती है और अपना वोट बैंक की फिक्र जिसको खाई जाती है। फौज के नज़दीक इस किस्म के कोई तहफ़ुज़ात नहीं हैं, लिहाजा फौज जो है पेशावराना महारत के साथ ये बदमनी क्या मानी रखती है, वो तो बड़ी बड़ी खाना जंगियों को फरोह कर सकती है। मेरे समझ में आता है कि जब स्वात में फौज लगाई जा सकती है, जनूबी बलोचिस्तान में फौज लगाई जा सकती है, तो कराची में क्यों नहीं लगाई जा सकती? क्या कराची पाकिस्तान का इलाका नहीं है?
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई और सबकी गुफ्तगू का निचोड़ यही था कि पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारे और हत्ता नीम फौजी अदारा रेंजर्स कराची में बहाली अमन के ताल्लुक से नाकाम हो गया है और अब फौज आनी चाहिए, लेकिन बहरहाल हुकूमत जो एक जमहूरी और सियासी हुकूमत है उसके भी अपने तहफ़ुज़ात हैं, उसके भी अपने दलाइल हैं। और कल जो बुध को इजलास होने वाला है काबीना का इस्लामाबाद में, जिसमें पाकिस्तान के सूबे सिंध के गवर्नर और वज़ीर आला और दीगर जो रेंजर्स के सीनियर अहदेदार हैं वो भी मौजूद होंगे, तो उसमें जो फैसला होगा बहरहाल वो पाकिस्तान के आवाम और ख़ास तौर पर कराची के शहरियों के लिए अहमियत का हामिल होगा और वाज सूरत हाल कल के इजलास के बाद किसी हद तक सामने आ सकेगी। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली बासिस जी और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।